Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day and the week. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us with your queries on these numbers, 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. These are Delhi numbers, so callers who are calling us from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
Namaskar, Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj Ravivar hai aur har Ravivar ki tarah, aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke sare jawab denge. Sawal poochne ke liye aap hame in numberon par phone kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो मोबाइल फोन करने से पहले अपना दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए. और श्रोताओं, आपके सारे जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष जी, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन.
जी, बहुत धन्यवाद.
चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले अनुभव हेडलाइंस.
थैंक यू प्राची. ओपेक प्लस डिसाइड्स टू कीप ऑयल आउटपुट स्टेडी डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशंस. इंडियाज राइस प्रोडक्शन एक्सीड्स 150 मिलियन टन्स इन 2025, सेज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान. एंड domestic markets to focus on economic data and geopolitical developments for cues next week.
OPEC Plus ने भू राजनीतिक तनाव के बावजूद तेल उत्पादन को स्थिर रखने का फैसला किया. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2025 तक भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक बढ़ा. और देश के प्रमुख शेयर बाजार की नजर अगले सप्ताह आर्थिक डेटा और भू राजनीतिक स्थिति पर होगी.
And now an important announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And now let's take the first story of the day. OPEC Plus has agreed in principle to maintain steady oil output despite rising political tensions among key members and widening geopolitical uncertainty. The eight participating member countries, Saudi Arabia, Russia, the United Arab Emirates, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria and Oman, collectively pump about half of the world's oil. They had raised output targets by around 2.9 million barrels per day between April and December 2025, equivalent to nearly 3% of global demand, before agreeing in November to pause further increases for January, February and March this year. Oil prices fell more than 18% in 2025, their steepest annual decline since 2020, amid concerns over oversupply. On Saturday, the United States captured Venezuelan President Nicolas Maduro, and U.S. President Donald Trump said Washington would take control of the country until a transition to a new administration becomes possible, without saying how this would be achieved.
Tensions between Saudi Arabia and the United Arab Emirates flared last month over the conflict in Yemen, after a UAE-aligned group seized territory from Saudi-backed government, triggering what has been described as the biggest rift in decades between the two former allies. OPEC has previously managed internal disputes by prioritizing market stability, but it is now facing multiple challenges. Russian exports are under pressure from United States sanctions linked to the war in Ukraine, while Iran is facing protests and U.S. threats of intervention. Geopolitical uncertainty has deepened further after United States captured Venezuelan President Nicolas Maduro. Venezuela holds the world's largest proven reserves, but production has sharply declined due to years of mismanagement and sanctions. No meaningful production increase is expected despite Trump's assurance of increased output. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
श्रोताओं, पहली कॉल हमें आ रही है गुजरात से. गुजरात से राजेंद्र जुड़ रहे हैं. राजेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए.
नमस्कार सर.
नमस्कार
सर, मेरा कहना ये है कि मैं सर 2016 से SIP सर कर रहा हूँ. सर मैं उस समय टारगेट लेके चला था कि आज सर मेरी उम्र 46 ईयर है, तो 10 साल पहले मैं टारगेट लेके चला था कि मुझे अपने रिटायरमेंट तक कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुझे फंड जमा करना है. वह सर अभी तब से लेके 2000 से मैंने रुपए से SIP शुरुआत की थी. आज सर अब मैं करीब 20,000 रुपए की SIP कर रहा हूँ और अभी मेरे पास करीब 15 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो पाया. तो सर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं कि अभी आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए के फंड तक मैं कैसे पहुंचूं. सर अभी सर मेरे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप, मल्टीप्लेक और ये मल्टी कैप, इसके अलावा लार्ज कैप फंड का हमारे मेरे पोर्टफोलियो में है. अभी तक सोना चांदी और बाकी दूसरा कमोडिटी में मेरा अभी कोई भी फंड नहीं है. तो सर इसके बारे में मार्गदर्शन करें सर. और सर ये भी बताएं कि डॉलर की वैल्यू घटती बढ़ती रहती तो मुझे उसका फायदा कैसे मिले सर.
जी, सबसे बड़ा सवाल आपका कि आपका लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए, आप उस तक कैसे पहुंचे. देखिए, किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में टाइम का आपकी तरफ होना, समय का आपके साथ होना, ये बहुत जरूरी होता है. इसीलिए बोला जाता है कि स्टार्ट अर्ली, वेन एवर यू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट. तो अब आप अपने आकलन में ये मानिए कि अगर आपको 12-13% सालाना का अगर आप रिटर्न अपने फ्लेक्सी, मल्टी, लार्ज, जो आपने फंड्स आपके पास इन कैटेगरीज के फंड्स, आई थिंक कैटेगरीज का चुनाव आपका ठीक है एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन आपको रिटर्न एजम्पशन अपनी 12-13% सालाना लेकर चलनी होगी. इससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है तो आप उसको अपना बोनस मानिए. तो अब आपको ऑनलाइन बहुत जगह SIP कैलकुलेटर, ये टूल्स ऐसे मिलेंगे. तो आप देखिए कि आप 12-13% अगर रिटर्न कमाते हैं, कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट अवधि है, तो आपको कितने रुपए का SIP करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने 1 लाख तक के लक्ष्य तक पहुंचे. तो आप थोड़ा सा ये कैलकुलेट करके पहले अमाउंट निर्धारित करें, कितने SIP, कितने रुपए का SIP आपको इस लक्ष्य तक लेके जाएगा, और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें. दूसरा सवाल आपका गोल्ड या कमोडिटीज को लेकर, देखिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एसेट क्लासेस आपके पास हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप. फंड्स का आपका चुनाव कैसा है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ब्रॉडली यू आर इन्वेस्टेड इन द राइट कैटेगरी ऑफ फंड्स. अगर आप चाहें तो 10-12% अपने पैसे का एक एलोकेशन गोल्ड में रख सकते हैं. गोल्ड एक अच्छा हेज माना जाता है. जब भी इक्विटी मार्केट्स क्रैश होती हैं तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करता है उस लिहाज से, और हाल फिलहाल में देखा गया है कि गोल्ड की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है. तो अगर आप इच्छा से 10-12% की एलोकेशन गोल्ड में रखना चाहते हैं तो आप वो एलोकेशन कार्व आउट कर सकते हैं. लेकिन बहुत जरूरी है कि आप पहले अपना SIP आप अंधेरे में ना चलें, थोड़ा प्लानिंग के साथ चलें. आप देखिए कि आपके पास कितना टाइम होराइजन है, कितना आपका लक्ष्य, आपको पता है 1 करोड़ रुपए है, तो आप पहले निर्धारित करें कितने रुपए का SIP आपको वहां तक पहुंचाएगा और उस अमाउंट को इक्विटी डोमिनेटेड पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करें.
द नेक्स्ट कॉलर इज योगेश फ्रॉम दिल्ली. बट बिफोर वी टेक द क्वेश्चन फ्रॉम योगेश, माय क्वेश्चन टू यू आशुतोष, जैसे अभी आपने कहा कि गोल्ड के लिए स्पेशली, क्योंकि हमने पिछले साल में देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो जब आप एक मल्टी कैप में करते हैं, जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो ऑब्वियसली गोल्ड इज पार्ट ऑफ दैट. बट डू यू थिंक इट्स ऑल्सो मेक सेंस टू हैव अ सेपरेट यू नो इन्वेस्टमेंट इन अ फंड विच इज डेडिकेटेड टू गोल्ड?
देखिए, ये एक दो कैटेगरीज अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की होती है, एक मल्टी कैप और एक मल्टी एसेट.
जी, मल्टी एसेट.
मल्टी कैप में आपको, इट्स एन ऑल इक्विटी फंड, तो उसमें आपको मल्टी कैप में लार्ज, मिड और स्मॉल मार्केट की तीनों सेगमेंट्स का एक्सपोजर मिलता है. गोल्ड का एक्सपोजर आपको मल्टी कैप फंड्स में नहीं मिलता, मल्टी एसेट्स में मिलता है. तो अगर एक पर्याप्त मात्रा में, लेकिन मल्टी एसेट फंड्स में प्रॉब्लम यह है कि हर फंड का एसेट एलोकेशन पैटर्न अलग है. कोई ये एक प्री डिटर्मिंड एसेट एलोकेशन नहीं है. किसी किसी हर फंड में गोल्ड या इक्विटी या डेट की मात्रा वेरी करती है. तो आपको ये देखना होगा कि आपने जो फंड का चुनाव किया है, अगर आपको उसमें 10-12% एक पर्याप्त मात्रा में गोल्ड मिलता है तो आपको बिल्कुल अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक आपको टैक्स एफिशिएंट पैकेज मिलता है. रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर करता है, तो एक काफी टैक्स एफिशिएंट व्हीकल बन जाता है आपके लिए. लेकिन अगर उसमें गोल्ड की मात्रा पर्याप्त नहीं है या शायद ज्यादा है जितनी चाहिए, तो आपको सोचना होगा कि क्या वो फंड आपके लिए सही है या आपको अलग से एलोकेशन करने की जरूरत है।
एंड नाउ लेट्स टेक द कॉल फ्रॉम योगेश। योगेश, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेट फॉर द न्यू ईयर, हैप्पी वेरी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। माय क्वेश्चन इज इन 2026 राइट नाउ, सो डू वी हैव टू रिलाई ऑन एक्टिवली मैनेज ब्लू चिप फंड एंड हाउ यू सी लाइक देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नाउ एज दे आर वेरी हाईली अंडर परफॉर्मिंग, लाइक एक्सिस ब्लू चिप इज ऑल्सो हाईली अंडर परफॉर्मिंग, सो हाउ शुड वी टैकल दैट?
Yes, so if you want to by and large remain invested in large caps, then I think there is a very strong case to seriously start considering index funds, because it has been seen generally that a lot of large cap funds, actively managed funds, have been increasingly under performance pressures versus the index. And on the other hand, index funds give you a very good large cap market wide exposure at a very nominal expense ratio in comparison to actively managed funds. So that's why for a pure large cap play, index funds can be a good option. But if you want a more broader exposure across the market, then I think flexi cap, multi cap, value, these kind of funds still hold a lot of merit. And the other nuance is that, yes, in the last 1 year, large cap, actively managed large cap funds have significantly underperformed. And a large contributor, I believe, is the fact that the actively managed funds still have some component of mid and small cap exposures in their portfolio. Because by regulatory mandate, any actively managed large cap fund has to necessarily invest at least 80% in large caps. And we've seen a lot of funds do keep some allocation to smaller segments, which have coincidentally in the last 1 year not performed as well as the large caps. And that is what has also impacted their performance versus the benchmark. But still, that doesn't change the argument that, yes, large cap funds is one category where index funds can be your de facto choice.
दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं हाइब्रिड, उसमें जो डेट पोर्शन होता है उसमें रिटर्न अप्रोक्सीमेटली किस रेंज में आता है? थैंक यू वेरी मच।
जी देखिए, जैसा आपने बताया कि हाइब्रिड फंड्स एक मिश्रण होता है इक्विटी और डेट का, ये कॉम्बिनेशन वेरी कर सकता है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में आपका 75% पैसा इक्विटी में निवेशित रहता है, 25% डेट में। वहीं अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरफ जाते हैं तो ये टेबल टर्न हो जाता है, आपका करीब 25% पैसा इक्विटी में रहता है और 75% डेट में। अब इसका डेट कंपोनेंट कितना रिटर्न देता है, आई थिंक इसका एक अच्छा बेंचमार्क है, आप देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स कितना रिटर्न देते हैं, जो कि 7.5-8% सालाना रिटर्न अगर हम हाल फिलहाल में देखें, पिछले 2-3-5 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो आपको इन फंड से करीब 7.5-8% रिटर्न की रेंज में रिटर्न मिल रहा है। तो आपका एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए डेट कंपोनेंट से किसी भी हाइब्रिड फंड के। आप मोटे तौर पर यह माने कि डेट फंड्स आपको एफडी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न दे देंगे और साथ में आपको लिक्विडिटी मिलेगी, आप किसी भी वक्त पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट केस ऑफ डेट फंड्स एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन यू कैन हैव।
आशुतोष, यू मेंशन टू टर्म्स हियर, कंजर्वेटिव एंड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, हाउ डू यू differentiate?
Yeah, so aggressive hybrid funds are more equity dominated portfolios. They are for the investors who are looking still for wealth creation, but they want to remain slightly more conservative rather than going all into equity. Right. So they invest about 75% of your money in equity stocks and 25% in debt instruments. While conservative hybrid funds, as the name suggests, invest only 25% in equity and 75% in debt. So they, of course, cannot match the wealth creation potential of aggressive hybrids, but they give you some exposure to equity and the overall experience is relatively more stable.
So basically it depends on your risk appetite.
Yes, risk appetite, what is it that you intend to do with that money, what is your time horizon, a lot of things come into play to decide which one might be more appropriate for you.
Ji, UP se hamare saath Shivam jud rahe hain. Shivam ji, apna sawal poochiye.
Ji sir, namaskar sir.
नमस्कार, पूछें अपना सवाल।
सर मेरा सवाल ये है सर, जैसे हम कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं सर, तो उनका वो जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं ना सर, तो हम उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो सर हम उनके चार्जेस से बच जाएंगे, इसके बारे में राय चाहिए थी सर।
देखिए म्यूचुअल फंड्स जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो अपना पोर्टफोलियो मंथली बेसिस पर रिपोर्ट करते हैं और मंथ के बीच में वो क्या बाइंग और सेलिंग करी इसकी जानकारी आपके पास नहीं होती है। तो देखिए इसमें दो तीन न्यूएंसेस हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। एक तो आपके पास एक थ्रेशोल्ड स्केल होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पूरा खुद से अपने आप से वो डुप्लीकेट में बनाना चाहते हैं तो वो जो 30 40 50 60 स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो एक आपको थ्रेशोल्ड कैपिटल चाहिए होगी। म्यूचुअल फंड में आपको बड़े कन्वीनियंटली 500 रुपए के एसआईपी में भी आपको पूरे 30-40 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का एक्सपोजर दे देता है। दूसरी बड़ी बात यह टैक्स इनिफिशियंसी। अगर आप खुद से वही स्टॉक खरीदते और बेचते हैं बार बार तो हर ऐसे इंस्टेंस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। वहीं म्यूचुअल फंड एक टैक्स शेल्टर्ड व्हीकल है तो जब म्यूचुअल फंड वो स्टॉक बार बार खरीदता बेचता है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। जब आप फाइनली कभी आगे चलकर वो म्यूचुअल फंड बेचेगा तो आपका जितना कैपिटल गेन इकट्ठा हुआ है उस पर आप सिर्फ एक बार टैक्स देंगे, लेकिन आप बार बार खुद से स्टॉक खरीदेंगे बेचेंगे तो आप टैक्स देंगे। और तीसरा बड़ा मुद्दा यही है कि आपको पता नहीं चलेगा कब फंड मैनेजर ने स्टॉक में एंट्री लिया एग्जिट लिया, क्योंकि महीने में एक बार आपको पोर्टफोलियो मिलेगा। तो आप अगर वो डुप्लीकेशन करेंगे भी ट्रेल करेंगे भी तो वो एक इम्परफेक्ट आपका मेथड होगा और शायद आप सेम रिजल्ट्स अचीव ना कर पाएं। और देखिए म्यूचुअल फंड का एक मेन इन्वेस्टमेंट का रैशनल ही है कि आपको एक कन्वीनियंट एक बिना मेहनत किए हैंड्स फ्री वे में आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप चीजों को सिंपल रखिए। बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो वाले भी फंड्स आते हैं इंडेक्स फंड्स, जिनमें खर्चा बहुत ज्यादा नहीं लगता लेकिन आपको कन्वीनियंस पूरी मिलती है। अगर आप खर्चे को लेकर ज्यादा जागरूक हैं और आप काफी कॉन्शियस हैं तो आप इंडेक्स फंड्स का चुनाव करें।
एंड नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल वंस अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। केशव इज ऑनलाइन विद अस। केशव वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते, अपना सवाल पूछे।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि हम एफडी में बैंक में एफडी है तो उसमें 15G और 15H फॉर्म भरते हैं, उससे टैक्स नहीं कटता, टीडीएस नहीं कटता। और म्यूचुअल फंड में भी क्या कोई टैक्स कटने के चांसेस होते हैं? हमने 30 लाख से लगभग हमारे एफडी है, हम म्यूचुअल फंड में अगर इनको लगाएं लमसम इकट्ठा लगा दें एक साल के लिए तो क्या हमें क्या कितना बेनिफिट होगा? क्या ये हमारे को जानकारी कि अभाव के कारण हमने एफडी में ही पैसा लगा रखा?
जी तो पहले तो आपका सवाल रिगार्डिंग 15G फॉर्म, देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई आपका टैक्स टीडीएस नहीं होता कोई, या आपका एनुअल बेसिस पर आपको कोई 15G फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जब तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही आपको वो टैक्स से बचने के लिए कोई फॉर्म सबमिट करने की जरूरत पड़ती है। आप जब म्यूचुअल फंड बेचिएगा चाहे आप 10 साल 15 साल म्यूचुअल फंड होल्ड करिए, आपको इन सब सालों में कोई टैक्स नहीं देना होगा और कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप जिस साल जिस फाइनेंशियल ईयर में भी आप बेचेंगे अपना म्यूचुअल फंड उस साल की टैक्स रिटर्न में आपको वो गेन डिक्लेयर करना होगा और उस पर जो भी टैक्स बनता है आपको पे करना होगा। इंटरिम में आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना। जहां तक आपने रिटर्न की बात बोली, देखिए अनलाइक एफडीज म्यूचुअल फंड्स कोई गारंटीड रिटर्न नहीं देते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव के अधीन है आपके रिटर्न, लेकिन जनरली देखा गया है ये कोई गारंटीड नहीं है, किसी तरह की एश्योरेंस नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में कोई कैपिटल गारंटी भी नहीं होती है, लॉस भी होते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एक आम तौर पर एक अच्छी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मानी जाती है। इक्विटी फंड से सालाना 12% अगर आप रिटर्न की आशा लेके चलते हैं तो मेरे ख्याल से काफी रीजनेबल आपकी एक्सपेक्टेशन है। वहीं डेट फंड्स में 7-8% रिटर्न की अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं तो वो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन मानी जाएगी। तो बिना किसी गारंटी के एक ऑर्डिनरीली एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन आपको रिटर्न की इतनी करनी चाहिए दोनों टाइप के फंड्स हैं।
आशुतोष अगेन वन क्वेश्चन, यू मेंशन दैट देयर आर नो टैक्सेस इन्वॉल्व व्हेन यू नो वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, बट व्हाट अबाउट द फंड्स वेयर वी आर गेटिंग अ डिविडेंड maybe on a quarterly or a monthly basis, isn't a TDS deducted on that?
Yes, so on dividends you have to pay tax. The dividend income gets added in the yes. new in the revised framework the dividend income gets added to your income, and when you are filing your return you'll have to add it to your income. Okay. It will be taxed at the marginal slab rate, whatever is applicable to you.
Right. Okay, let's move on to the next story. The year 2025 stands as a defining chapter in India's development journey. It saw policies translate into progress and intent into impact. Today, we have a report on how India emerged as the world's new production engine in 2025.
This year, India reached a decisive inflection point with a projected growth outlook of 7.8% in its industrial and economic trajectory. The country positioned itself as a fast-growing market and major global production hub with the rising foreign direct investment and expanding industrial capacity. India's first tempered glass manufacturing facility was inaugurated this year in Noida, which marked a symbolic break from the past and proving that India is now producing complex. Similarly, in the energy sector, country achieved a major milestone by reaching 100 gigawatt of solar manufacturing capacity. Meanwhile, solar module production expanded sharply from 2.3 gigawatt in 2014 to 100 gigawatt in 2025.
Aaj 11 varsh mein solar energy 30 guna bad chuki hai. Hum naye naye dam bana rahe hain taki hydro ka vistar ho aur hame clean energy ki uplabdha ho. Bharat mission green hydrogen lekar ke आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है. भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है.
This year also witnessed aviation manufacturing gain momentum with the induction of nearly 2,200 new aircrafts. The passenger traffic projected to reach 630 million by 2030. On the other hand, country's industrial rise created mobility for millions. The electronic sector alone supports around 25 lakh jobs, and even the national unemployment rate for men declined to 5%. The reforms under Prime Minister Narendra Modi continued to shape the governance framework. GST 2.0 with rationalized tax slabs of 5% and 18% and faster compliance processes, reducing costs and operational friction for manufacturers.
Ye reform Bharat ki growth story ko accelerate karenge, karobar ko aur aasan banayenge, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे.
India emerged as one of the world's most vital production and export economies with the deeper value chains, bold policy action, expanding global partnerships and an increasingly skilled workforce. With Shivang and Samarth, Akshit Kumar Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
श्रोताओं, आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे समक्ष, जैसा कि हमने पहले भी बताया, उपस्थित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आप अपने सारे के सारे सवाल इन नंबरों पर फोन करके आशुतोष जी से पूछ सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331444, 2342105050 और 2331064. रुक करते हैं आज की अगली खबर की तरफ. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक रहा है. श्री चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित बेहतर गुणवत्ता वाली 25 फसलों की 184 नई किस्मों के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 10 वर्ष में बीजों की 3,200 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं. श्री चौहान ने यह भी बताया कि सरकार विभिन्न योजनाओं के लाभ आने वाले 3 वर्षों में किसानों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है. और लखनऊ से हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हितेश जी, अपना सवाल पूछिए.
हाँ सर, गुड इवनिंग. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं तो उस केस में चिल्ड्रन फंड बेटर रहते हैं या फिर इक्विटी मार्केट के जैसे लार्ज मिड या फ्लेक्सी कैप बेस्ट रहते हैं? तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली चिल्ड्रन फंड और बाकी फंड्स के हैं जब उनके हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं. थैंक यू.
जी, तो मेरी राय में आप दोनों में बहुत ज्यादा मतभेद मत करिए, क्योंकि चिल्ड्रंस फंड आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते. उनके नाम में चिल्ड्रंस फंड आता है, बट ब्रॉडली जिस तरह वो मैनेज किए जाते हैं तो वो लार्जली आपका वही इन्वेस्टमेंट नीड फुलफिल करते हैं जो कि कोई और इक्विटी डोमिनेटेड फंड करता है. फर्क बस उसमें यही इतना ही होता है कि 18 साल की उम्र के बाद चिल्ड्रन फंड्स में एक स्पेसिफिक ऐसा प्रावधान होता है कि वो यूनिट्स आपको बच्चे के नाम पर ट्रांसफर करनी होती है और उसके बाद से वो उसके नाम में इन्वेस्टमेंट चलती है, मतलब आफ्टर द चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट. नॉर्मल फंड में आप अपने नाम में से ही निवेश कर सकते हैं और जब जरूरत हो तो उस पैसे को रिडीम कर सकते हैं, बट अदरवाइज इन फंड्स में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है. तो आप फंड को उसके मेरिट पर, वो कितना अच्छे से मैनेज होता है, कितना वो रिटर्न देता है, किस तरह के पोर्टफोलियो में वो निवेश करता है, आप इस टाइप के मुद्दों पर विचार कर निवेश करें. अदरवाइज कोई चिल्ड्रन रिलेटेड गोल्स के लिए चिल्ड्रन फंड कुछ आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं ऐसा नहीं है, तो आप बिल्कुल अगर आपको कोई बढ़िया फ्लेक्सी कैप फंड आपके दिमाग में है जो आपको अच्छा लगता है आप बिल्कुल उसमें भी निवेश कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए।
लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। कपिल फ्रॉम मुंबई इज ऑनलाइन विद अस। कपिल, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
यस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आई हैव वन स्मॉल क्वेश्चन, उसका आप मेरे को अगर उत्तर दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। एक्चुअली मैंने अपनी बेटी के नाम से एक प्लान किया है 10 लाख रुपीज का, दैट्स SWP, ठीक है। उसमें डिविडेंड मिलेगा और तकरीबन 9000 समथिंग 10 लाख रुपीज की मेरी इन्वेस्टमेंट है, और उसी को जो जो रिटर्न आएगा उसको मैं दोबारा सिप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इज इट ए वाइज डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म फॉर 10 ईयर्स? Can you please assist me? Thank you very much.
No, Kapil ji, I would advise you against doing that, because what you are doing is simply round tripping your money. If you have already 10 lakh invested in good mutual funds, then there is no point for you to be redeeming it. SWP is nothing but making partial redemptions in a systematic way from your own money. And then if you are simply invested in a fund and then you are on a monthly basis redeeming from that and then reinvesting, so you are achieving little other than paying taxes. So every time you redeem, you would pay tax, and then a little less than what you started with would get reinvested. And this round tripping does not achieve much. So keep your 10 lakh invested for the long term for your daughter's future, and start redeeming it through SWP 1.5 years before you foresee the need of the money. So if, you know, let's say your daughter has reached a higher education stage and, for that you need a big amount in lump sum for to facilitate her higher education, then ahead of that, at least 1.5 years before that, you start redeeming systematically through SWP so that you don't catch a market low right at the moment when you need the money. Otherwise, you know, I would advise you against the plan that you mentioned.
The next caller is Subhash from Gurugram, but before we take his call, let's look at the next story. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the vision of Viksit Bharat through Viksit Gaon and said funding for rural employment has been significantly increased to support sustainable outcomes. The minister informed that for the forthcoming financial year, an allocation of 1,51,282 crore rupees has been proposed, out of which more than 95,000 crore rupees will be contributed by the central government. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan also talked about the newly enacted Viksit Bharat Rozgar or Ajivika Guarantee Mission Grameen Ji Ram Ji Act. He said that despite having an enormous budget, the earlier Manrega did not lead to any permanent asset creation or long-term development of the villagers. The minister said that new Viksit Bharat Ji Ram Ji Act safeguards workers' interests. And now let's take the call from Subhash. Subhash ji, welcome to Market Mantra. Please ask a question.
Ji, namaste ma'am.
Namaste. Sawal
puchhe. Dhanyawad. Sir, main puchna chahta hu ki jo jaise ki mann lijiye main mutual fund mein invest koi karta hai to उसका प्रथम स्टेज, लॉन्ग टर्म का प्रथम स्टेज मैं पूछना चाहूंगा, वो कितने वर्ष से आरंभ होता है और इसका लम सम में थोड़ा मैं डिटेल में बताइएगा। मैं ज्यादा इसी पे मैं फोकस करके मेरा सवाल है, कृपया बताइए लॉन्ग टर्म जो कहाँ से आरंभ होता है या कहाँ तक होता है।
जी जी, इन ब्रीफ, बिकॉज आशुतोष वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।
श्योर, तो इन ब्रीफ देखिए, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई भी अवधि नहीं है। म्यूचुअल फंड आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आप कितने भी टाइम में कभी भी इन्वेस्ट करके अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। एक जनरल थंब रूल मानिए कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का अपना होराइजन लेके चलिए, अदरवाइज इसका कोई निर्धारित समय नहीं है, आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी पैसा मार्केट में डालिए और कभी भी निकालिए।
Rajkumar from Gwalior is online, but we are running short of time, so I would request you to please call us next week. And let's take one more story. After starting the year on a positive note, domestic benchmark indices are expected to take cues from a mix of domestic and global factors next week. The investors are likely to keep track of PMI data followed by financial GDP growth. Markets are also likely to react to US military action on Venezuela and jobs data. And that's it from us. Thank you, Ashutosh, for joining us in the program.
Thank you.
Dhanyavad Ashutosh.
And before we close, a quick look at the headlines. OPEC Plus decides to keep oil output steady despite geopolitical tensions. India's rice production exceeds 150 million tons in 2025, and domestic markets to focus on economic data and geopolitical development for cues next week. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।